نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. إن الذين قالوا ربنا الله، बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, क्या कहा कि अल्लाह हमारा रब है, ثم استقاموا फिर वो उस पर जम गए, जमे रहे। इस्तकामत, इस्तकामत क्या होती है कि इंसान किसी चीज के ऊपर फर्मली जमा रहे, यानी इंसान टस से मस ना हो, बस वो कह दिया एक दफा बात हो गई, फिर उसके ऊपर हमेशा साबित कदमी रखे। तो क्या है, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَةُ, उनके ऊपर उतरते हैं फरिश्ते हैं। और क्या है उनके लिए, क्या कहते हैं, अल्ला तखाफू वला तहसनु, ना तुम डरो ना तुम गम करो, व अबशिरु बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, और खुशखबरी पाओ, सुनो खुशखबरी है तुम्हारे लिए, गुड न्यूज है जन्नत की, वो जो तुम थे वादा दिए जाते। हम सब बड़े खुश हो रहे होंगे कि हम भी तो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, तो क्या ये हमारे लिए भी खुशखबरी है? अल्लाह को अपना रब मानना क्या है? रब कौन होता है? खालिक, मालिक, मुदब्बिर, पालने वाला। तो रब इंसान जब मुंह से बोलता है ना अल्लाह मेरा रब है, तो ये तो जुबान की बात है ना। देखा अब ये जाएगा कि अमली जिंदगी में भी क्या उसने अल्लाह को अपना रब बनाया। अमलन भी इंसान जिसकी इताअत कर रहा है वो अल्लाह ही है, जिसके पीछे चल रहा है वो अल्लाह है या कोई और है? यानी जब अमल का वक्त आता है तो तब वो रब याद भी रहता है या नहीं रहता? जब फरमा बरदारी करनी होती है तो किसकी करता है? किसी भी काम में किसकी करता है? क्योंकि इस तरह मुंह से कहने वाले तो बहुत हैं, तारीख में बहुत गुजरे हैं कि रब्बे काबा और ये और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए जाते थे, मगर फरमा बरदारी इताअत किसी और की करते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने आखिरी नबी को भेजा। तो यहाँ पे फरमाया रब्बुन अल्लाह, जिसने कह दिया और उसके बाद मुस्तकिल मिजाजी से उस पर डट गया कि अब इस रास्ते से मैंने हटना नहीं है, कह के उसके पर जम गया, ईमान का जुबान से इकरार किया। और ये तो दावा है ना, सिर्फ अभी दावा है, अभी तो इकरार जुबान से ही हुआ, उसके बाद उस दावे को सच करके दिखाया अपने अमल के साथ, सबूत दिया साबित कदमी से कि अब हालात जैसे भी हों, मुश्किल हों, आसानियां हों, दिन हो रात हो, अकेला हूं, सबके साथ हूं, जो जो जिस तरह के भी मर्जी हालात हो, मूड अच्छा है, मूड बुरा है, बीमार है, तंदुरुस्त है, जैसा भी है, अकेला हूं या और भी मेरे साथ अमल करने वाले हैं, जो भी होगा, अब मैंने बस इसी पे इस्तकामत से चलते चले जाना, इसको नहीं छोड़ना। और ये इस्तकामत क्या है, अगर सहाबा कराम के अकवाल को देखें तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इसकी तशरीह की है कि फिर अल्लाह को रब मान के फिर उसके साथ किसी को शरीक ना बनाए, उसके सिवा दूसरे किसी इलाह की तरफ तवज्जो भी ना करें। और हज़रत उमर ने फरमाया खुदा की कसम इस्तकामत इख्तियार करने वाले वो हैं जो अल्लाह ताला की इताअत पर मजबूती से कायम हो गए, यानी उसकी इताअत में इतने स्ट्रांग हो गए मजबूती से, लोमड़ियों की तरह इधर से उधर और उधर से उधर नहीं दौड़ते फिरे। लोमड़ी कैसी होती है? लोमड़ी बड़ा ही हम तेजी के लिए तरारी के लिए लोमड़ी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, लोमड़ी कहते हैं ना कि वो लोमड़ी की तरह चालाक है, बड़ी चालाक, तो लोमड़ी की तरह इधर से उधर और उधर से उधर नहीं दौड़े, यानी क्या मतलब, वो इतने चालाक है जब उधर को फायदा नजर आता है उधर चले जाते हैं, जब इधर को नजर आता है इधर आ जाते हैं, ऐसे तेज तर्रार है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर, ऐसे नहीं होते हो, रेन और शाइन वो एक ही रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने फरमाया कि बहुत से लोगों ने अल्लाह ताला को अपना रब कहा मगर उनमें से अक्सर काफिर हो गए। साबित कदम वो शख्स है जो मरते दम तक इस अकीदे पर जमा रहे, फिर टस से मस ना हो, यह नहीं है कि कुछ दिन तो कोई दर्स सुन लिया, बस कुरान सुन लिया है तो बड़े खुश हैं और अब तो बड़ा बहुत बड़े बड़े प्लान भी हैं और सारा कुछ है, और थोड़े दिन अमल किया उसके बाद सारा भूल भाल गए, शादी से पहले तो बहुत अल्लाह वाले थे उसके बाद सब खत्म, जितने दिनों कुरान की क्लास में रहे उस वक्त बहुत दीनदार और बहुत अमल करने वाले थे उसके बाद कुछ पता ही नहीं, ये नहीं होता। तुम मस्तकामू साबित कदम, आप बताएं ऐसे इंसान का ईमान क्या ईमान है जो साबित कदम ही ना हो, एक स्टेप आगे ले तो दो पीछे ले ले, फिर दो कदम आगे हो फिर चार पीछे चला जाए, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं इंसान फिर जो फैसला कर लिया ना अब इस पे मजबूती से डट जाए, फिर पीछे नहीं हटना, डिटरमिंड हो, चलता ही चला जाए, फिर आप खुद देखें इस्तकामत, फर्म होना किसी चीज पे। आप देखिए एक एग्जांपल से सोचें, क्या आप किसी ऐसे इंसान के सपोर्ट कोई काम करते हैं जिसका आपको पता ही नहीं है, डावाडोल, कभी कुछ कुछ तो कभी कुछ, उसके सपोर्ट कोई अपना अहम काम करेंगे, उसको आप काबिले भरोसा समझेंगे, उसको अपना समझेंगे कि ये मेरा ही है, ये वो कहेंगे ये तो आज इधर है तो कल उधर है, वो तो किसी और की बात सुन लेगा परसों वो किसी और की तरफ चल पड़ेगा, इसका क्या है, कभी नहीं आप उस पर भरोसा करते ना, ये मेज है इसके ऊपर मैं चीजें तभी रहूंगी जब मुझे पता चलेगा कि ये मुस्तकीम है, इस ये फर्म है स्ट्रोंग है, अगर मुझे पता हो कि ये डावाडोल है, अभी मैंने इसके ऊपर चीज रखी है गिरी जाएगी, रखूंगी चीजें, तो इंसान भी ऐसे इंसान पे भरोसा नहीं करता जो डावाडोल होता है, कहां अल्लाह ताला क्या ऐसे इंसान को कबूल करेगा जिसका कोई पता ही नहीं है, आज अमल किया कल को सब गायब, आज बहुत हौसला है आज बहुत हालात अच्छे हैं तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़े बढ़ बढ़ के कह रहे हैं अल्लाह हमारा रब, कल को हालात कुछ और हो गए तो कह रहे हैं अब तो हमारा मूड ही बदल गया, अब ये नहीं हो सकता और अब तो मुझे बड़े गिले शिकवे, और क्या फायदा जी हुआ उस वक्त से, मैं तो इतनी इताअत कर रही थी क्या मुझे मिला, क्या मुझे मिला, मैंने तो इतनी दुआएं की थी और मुझे तो अब तो शिकायतों की एक लिस्ट है जो अल्लाह ताला से उसको शिकायतें, कभी ऐसा हुआ कि बीमार हो गए तो लो अब मैं बीमार क्यों हो गई, उससे सारा पिछला किया धरा था सारा गायब हो गया जहन से, सब कुछ भूल भाल गए, अब गिले शिकवों की लिस्ट निकाल ली, अब सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए, ऐसे नहीं होते वो जब फर्मली बिलीव करते हैं तो उस पे कायम रहते हैं, जब कोई अमल करता है तब भी करते हैं और जब कोई भी नहीं कर रहा होता तब भी करते हैं, ये नहीं वेट करते अच्छा फलां भी तो मेरी दोस्त कर ले फिर मैं करूंगी, फलां तो अभी करती नहीं है मैं अकेली कैसे करूं, उनको सपोर्ट भी तो होनी चाहिए, नहीं उनको इस चीज से कोई परवाह नहीं है, वो ट्रेंड सेटर्स हैं, हवा का रुख देख के अपना रुख मुतय्यन नहीं करते कि मैंने किधर को जाना है, जिधर को हवा चल रही है उधर को चल पड़ो, ये नहीं करते, वो हवा के अगेंस्ट भी चल देते हैं, ये देखते हैं कि अल्लाह का हुक्म क्या है, मुझे उसका हुक्म मानना है चाहे कोई करे चाहे नहीं करे, चाहे कोई माने चाहे नहीं माने, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, वो चलते चले जाते हैं, ये है इस्तकामत, ये नहीं है इस्तकामत के जिधर गए उधर जिधर बैठे जिसके घर गए वैसे ही तौर तरीके अपना लिए, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहना, ये नहीं है इस्तकामत, जैसा देश वैसा भेस, ये कौन सी इस्तकामत है, जिस मजलिस में बैठे जैसी वो बातें कर रही थी वैसे ही आपने भी शुरू कर दी, जिधर हवा का रुख देखा ना कि इधर को लोग जा रहे हैं उधर ही को अपना रंग ढंग अपना लिया, ये इस्तकामत है। अगर अल्लाह से बेनियाज लोगों की मजलिस में बैठ गए हैं तो गिरगिट की तरह उनके जैसे हो गए, फिर तो नमाज भी नहीं याद, और जब वो दीन का मजाक उड़ाएं तो आप भी मजाक उड़ाना शुरू कर दें, जब वो दीन के खिलाफ बातें करें तो आप भी उनकी हां में हां मिलाते जाएं। ऐसों के लिए नहीं उतरते फरिश्ते। तो ये कहना बड़ा आसान है कि अल्लाह हमारा रब है जी, वो तो हम भी कहते हैं, लेकिन उसके बाद ये तकाजे पूरे करते हैं तो वाकई फिर अल्लाह को रब बना के जिंदगी में चले। ये ऐसे बेसोचे समझे कह देना नहीं होता, वो तो तोते को भी रटा दे, जो बोलने वाले तोते हैं तो वो भी कहेगा रब्बुन अल्लाह, वो भी कह देगा, तो क्या वो उसका कबूल हो जाएगा? वो समझ के कहीं शऊर के साथ, सिर्फ जुबान से नहीं, पता चलना चाहिए कि जब जमने का मौका आता है आप जमते भी हैं कि नहीं। और ये कोई छोटी सी बात नहीं है, सादा सी बात नहीं है, अल्लाह हमारा रब है ये बहुत बड़ी बात है, ये पूरा वे ऑफ लाइफ है जिसका आप इकरार कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी के हर लम्हे में, हर काम में अल्लाह ही मेरा रब है, मेरी हर एक्टिविटी में। क्या बात नजर आनी चाहिए कि रब्बुन अल्लाह, पता चलना चाहिए लोगों को कि इसका रब अल्लाह है, इसलिए ये ऐसी है। मुंह से बोल के कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुंह से कहें ना कहें अमल पुकार पुकार के कह रहा हो कि रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। समझ आई? और एक मोमिन की जिंदगी में अगर आप देखें, गौर करें, कहां कहां ये बात नजर आती है कि अल्लाह ताला हमारा रब है, सोच में भी नजर आती है, एक्टिविटीज में भी नजर आती है, वक्त में भी नजर आती है, किसी मजलिस में बैठे हो तब भी नजर आती है, अकेले में बैठे हो तब भी नजर आती है, गुस्से में हो तब भी नजर आती है, खुशी के वक्त हो तब भी नजर आती है, कोई ताना दे तब भी नजर आती है, कोई दुख दे तब भी नजर आती है। तो ये हर जगह नजर आती है कि रब्बुन अल्लाह, वो मुझे पैदा करने वाला है, वो ही है मेरा रब, मैं उसकी मानने वाली हूं। कामयाबी मिले तब भी, नाकामी हो तब भी, कोई महरूमी रह जाए तब भी। मसलन आप एक काम आप करना चाहते हैं, आपने कोई प्लान बनाया, आपका कोई 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 कुछ आपने सोचा हुआ था, अब हो गया उलट, जो आपने सोचा था वो हुआ नहीं और हो गया कुछ और। अब देखते हैं ना कि अब आपके ऊपर क्या तारी होता है, अब पता चलेगा आपकी जिंदगी से कि रब्बुन अल्लाह, या नहीं पता चलता। फिर देखें अच्छे हालात में ड्राइंग रूम में बैठ के, स्टडी रूम में बैठ के, टेबल पे बैठ के ये कहना बड़ा आसान है रब्बुन अल्लाह, पता तो तब चलता है ना जब हमारी जिंदगी में कोई मौका आए, हमारा इरादा टूट गया, रब का इरादा हो गया, अब पता चलता है कि रब्बुन अल्लाह, कोई बात नहीं ये मेरे रब का इरादा है, मेरा इरादा टूट भी गया तो क्या हो गया। हज़रत अली ने नहीं फरमाया था मैंने तो अपने इरादे के टूटने से अपने रब को पहचाना है, कि पता है कि कोई और है जो कंट्रोल कर रहा है, मैंने कोशिश की तब भी नहीं हुआ, इसका मतलब है कि रब का इरादा कुछ और है, और मैंने उसी को मान लिया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया जो मेरे रब का इरादा है। मायूसी तो तभी आती है ना जब आप रब के इरादे को ही नहीं मानते, नहीं ये ऐसा हो क्यों गया, होना तो वही चाहिए था जो मैं चाहती थी। तो हर एक्टिविटी में, हर जिंदगी के फेज में आपको ये नजर आना चाहिए, जब कोई कहता है रब्बुन अल्लाह या जब मैं कहूं रब्बुन अल्लाह, तो मेरी जिंदगी उसकी तस्वीर हो, हर एक्टिविटी। आपकी जिंदगी में कौन कौन सी एक्टिविटी है, क्या कुछ करते हैं दिन में? सुबह सबसे पहले क्या करते हैं, जागते हैं ना, जागने की एक्टिविटी में आप किस तरह रब के साथ जोड़ सकते हैं, कैसे पता चलेगा रब्बुन अल्लाह? जब आप दुआ पढ़ के उठते हैं, फिर आप वॉशरूम जाते हैं, ये भी एक एक्टिविटी हो गई ना, दुआ पढ़ के वॉशरूम में कदम रखा, तब भी पता चल गया रब्बुन अल्लाह, आपने अपने अमल से दिखा दिया ना। फिर आप वजू करते हैं तो तब भी रब से जुड़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं रब से जुड़ते हैं, कुरान से जुड़ते हैं तो तब भी रब से जुड़ना है। आपने नाश्ता बनाया, नाश्ता करना उस वक्त भी आप जुड़ सकती हैं। तो इंसान रब से हर अपनी एक्टिविटी में जुड़ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, मुसलसल कोशिश, मुसलसल याद दिहानी, ये पता चले मेरे हर काम में कि ये तो रब की मानने वाली है। रंग ढंग ऐसे हो, उठना बैठना ऐसा हो, तो जब इंसान की सोच जो है ना रब से नहीं जुड़ी होती ना, फिर ईमानी तरक्की भी नहीं हो सकती। फिर देखने से ही पता चलता है कि ये रब से जुड़ा हुआ नहीं है, पता चलता है कि ये इसका रब अल्लाह नहीं है। क्योंकि जिसका रब अल्लाह है फिर उसके साथ उस पे इस्तकामत भी होनी चाहिए, कहीं भी गफलत नहीं होनी चाहिए, ना चलने में, ना बात करने में, ना बैठने में, ना लेटने में, ना खाने पीने में, कभी भी सोच ना टूटे। तो जब तक हम ये सीधे स्मूथ लाइफ में चल रहे हैं ना, आसानी है, ईमान भी बहुत अच्छा चल रहा है, ये जब टेस्ट आते हैं ना, रुकावटें आती हैं, तो इंसान कितना अपने दावे में सच्चा है, कितना उसकी इस्तकामत है, तब पता चलता है। और इंसान बड़ा मजे से चल रहा था जब अल्लाह की तकदीर या उसके फैसले वैसे ही चल रहे होते हैं जैसे वो चाहता है। लेकिन कहीं जरा भी आपके जो प्रोग्राम है, आपके जो फैसले हैं, उससे कोइंसाइड ना करें जो अल्लाह का फैसला है, फिर क्या होता है। वैसे तो हम दिन रात के अज़कार में तो कहते भी है ना, रदीतु बिल्लाहि रब्बा वबिल इस्लाम दीना वबि मुहम्मदिन नबिय्यिन व रसूला, ये कहते हैं ना, मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हो गई, रदीतु बिल्लाहि रब्बन। तो राजी हो गई तो फिर वो जो अल्लाह ने आपके लिए फैसला किया है उस पर राजी होती है कि नहीं, अल्लाह ने इन हालात में रखा है। क्या आपकी रजा अल्लाह की रजा से मैच होती है कि नहीं? अच्छा, आप किन के साथ ज्यादा रहना चाहते हैं, किन के साथ आपकी दोस्तियां होती हैं, जिनके साथ आपके माइंड मिलता है ना, हम उनके साथ बैठ के खुश होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि बस हम या तो दूसरे को भी वैसा ही बना लें जैसे हम सोचते हैं, या हम दूसरे की तरह सोचने लगे जब मैच हो जाए ना, जब जब एक दूसरे के साथ हम आंगी हो जाए तो फिर ही मजा आता है, फिर ही ताल्लुक बनता है ना। वहां पे ताल्लुक थोड़ी होते हैं जहां पे कोई किसी सोच का हो, कोई किसी सोच का हो। इसी तरह आप देखें, जहां इंसान अल्लाह की रजा पे राजी नहीं होता ना, तो मैचिंग नहीं हुई, फिर ताल्लुक नहीं रहता, ताल्लुक कट जाता है। तो जब आपने कहा अल्लाह ताला के मैं रब होने पर राजी हो गई, तो राजी होना है फिर हर उसके फैसले पे, मेरा रब अल्लाह है, ये फिर पता चलना चाहिए। एक उसकी मिसाल से समझे, कोई कोई औरत है, वो एक्सपेक्ट कर रही है, पहले उसकी 6 बेटियां, जब बच्चा पैदा हुआ तो पता चला 7वीं बेटी आ गई। फिर अब क्या रदीतु बिल्लाहि रब्बन वाली बात नजर आती है या नहीं, कि मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हूँ? क्योंकि जो रब होने पर राजी रहा, तो जो वो क्या करेगा, अपनी डोर रब के हाथ में थमा देता है, ठीक है जो मेरे रब ने फैसला किया, जैसा उसने चाहा उस पे मैं राजी। फिर इसी तरह जब कोई फौत हो जाएगा तो फिर क्या होना चाहिए, अल्लाह की रजा पे राजी होते हैं या नहीं, कि वो मेरा रब है। तो ये अमल अमल से बताना है कि जब कोई सिचुएशन पेश आती है उस वक्त मेरा रवैया क्या होता है, मैं साबित करती हूँ रब्बुन अल्लाह। और जिसने कहा अगर ऐसा होता तो फिर ये ना होता, तो फिर वो हो जाता, तो फिर वो ना होता, तो वो तो फिर अल्लाह के फैसले पे राजी ना हुआ, उसने तो सोचा कि अगर ये होता तो फिर मैं जीत जाती, फिर मेरा मेरी जो मर्जी थी वो हो जानी थी, ये मेरा नुकसान इसीलिए हुआ है क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये मेरा नुकसान ना होता। तो ये तो तकदीर पे ईमान नहीं, ये तो अल्लाह के फैसले पर ईमान नहीं। बात तो ये है कि नुकसान हो भी जाए तो इंसान कहे ठीक है, अल्लाह की मर्जी थी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह की मर्जी यही थी, ये मेरे मालिक का फैसला है, इस पे मैंने सर झुका दिया। तो ये है कहना, ये है अमल से सबूत कि रब्बुन अल्लाह, ये है इस्तकामत कि रब्बुन अल्लाह। तो जो इंसान ये बात कहता है ना, जिसके दिमाग में ये बात जम गई और वो इस अकीदे पे ऐसा कायम हुआ, ऐसा पक्का इसी पे रहा, उसके लिए हैं ये खुशखबरियां। ऐसा पक्का रहा कि यानी मरते दम तक वो इसी अकीदे पे कायम था, वो है खुशखबरी के लायक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा ऐसे कामों में मशगूल होता है कि देखने वाले ये समझते हैं कि वो तो जन्नती है, हालांकि वो जहन्नमी होता है। फिर बंदा ऐसे कामों में मशगूल होता है कि देखने वाले ये समझते हैं कि ये तो जहन्नमी है, मगर वो जन्नती होता है। बात समझ आई कि आमाल का दारो मदार जो है ना, वो उनके खात्मे पे है। कि खात्मा किस पे होता है? आज अल्लाह का फरमा बरदार है, आज उसका गुलाम है, आज शौक से कह रहे हैं रब्बुन अल्लाह, बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं, और कल तक क्या होता है ये कुछ नहीं पता। इस्तकामत चाहिए मरते दम तक। मरते दम तक अगर अल्लाह के गुलाम बने रहे और इसी पे जान निकली, तब है इस्तकामत। और अगर मरते वक्त अल्लाह के बागी हो गए, उसके नाफरमान हो गए, तो जो पिछला किया कराया था सब जाया। फिर आज ही वो इस्तकामत से नहीं रहा, आज ही वो अल्लाह की इताअत पे पूरा नहीं रहा, तो कल हशर के मैदान में ये क्या काम आएंगे अमाल। मजा तो तब है ना कि इंसान दुनिया से रवाना भी इसी चीज पे। तो ये याद रखें, आज जो भी आप अमल कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, इस पे कोई फखर करने की जरूरत नहीं है, कोई नाज ना करे, बल्कि अल्लाह से दुआ किया करें, फरियादें करते रहें, या अल्लाह आपने अपने फजलो करम से मुझे तौफीक तो दे दी है इस काम की, या अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूं इन्हीं कामों में लगी रहूं, और जब दुनिया से जाऊं तो तेरे गुलामों में शामिल हूं, अल्लाह इसी पे मुझे उठाना। ये है इस्तकामत। ये अल्लाह ताला के हर हुक्म पे इंसान सरे तस्लीम हम कर दे, झुक जाए, दिल माने ना माने, नुकसान हो फायदा हो, अकेला करे या दूसरे कर रहे हो तब भी करे, हालात अच्छे हो बुरे हो, सूली पे चाहे चढ़े या अमन में बैठा हो, इकतदार में हो इकतदार से बाहर हो, मालदार हो या फकीर हो जाए, सेहत हो या ना रहे, किसी का साथ रहे या ना रहे, वो चलता ही चला जाए। ये नहीं है कि आज शौहर का साथ है, आज घर के हालात अच्छे हैं, आज सब सही चल रहा है तो बस बड़ी इस्तकामत है, कल को कुछ और मसले हो जाते हैं तो कुछ कुछ भी नहीं रहा फिर। तो ये ऐसे कच्चे पक्के लोग, ऐसे लोग जो छोटी छोटी रुकावटों पे फिसल जाएं, वो फिर इस्तकामत वाले नहीं है। तो जो इस्तकामत से चलते रहते हैं उनके बारे में फरमाया, ततनज्जलु अलैहिमुल मलाइकातु, उनके ऊपर उतरते हैं फरिश्ते। और क्या कहते हैं, अल्ला तखाफु वला तहसन, तुम ना तुम डरो और ना तुम गम करो। कि आप बताएं खौफ किस चीज का होता है, डर किस चीज का होता है? हमेशा फ्यूचर का इंसान को डर रहता है ना कि फ्यूचर में क्या होगा, पता नहीं धड़का लगा रहता है, क्या होगा कैसा होगा। और गम किस चीज का होता है? पास्ट का, हुज़्न पास्ट का होता है। गम जिंदगी में ये हो गया, माजी में ये गलतियां हो गई। नहीं, वो उसके लिए ना कोई खौफ है ना गम है। ये खौफ और गम किसी की जिंदगी से निकल जाए तो कितने उसको जिंदगी पुरसकून हो जाए ना। तो ऐसे लोगों के लिए फरिश्ते आते हैं और वो ये कहते हैं। और ये फरिश्ते कब आते हैं? तीन मौके के ऊपर तो ये फरिश्ते, जिनके बारे में कहा गया बताया गया कि तीन मौके में तो आके खुद कहते हैं। और वो तीन मौके कौन से हैं? एक तो जब इंसान की मौत का वक्त हो, तब ये फरिश्ते आके यानी तसल्लियां देते हैं, ला तखाफ वला तहज़न, नहीं डरो नहीं, क्योंकि ये वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त है। ये تین انتہائی دہشت کے اوقات ہیں، موت کا بھی وقت، قبر میں بھی، اور حشر کا بھی، جب قبر سے اٹھیں گے تب کا بھی. تو ان اوقات میں انسان کا ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہو جاتا. تو یہ بندہ چونکہ دنیا میں ثابت قدم رہا، وہ وہاں پہ آ کے اس کے ساتھی بن گئے ہیں، کہیں گے اب ڈر کی بات نہیں ہے، خوف نہ کھاؤ. وہ موت کا وقت بڑی گھبراہٹ کا وقت ہے. اب جتنا بھی انسان نیک عمل کر لے، لیکن دیکھیں وہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں بالکل اجنبی دنیا نا. آپ دیکھیں، آپ خود سوچیں کہ آپ کوئی بالکل نئی جگہ پہ چلے جائیں جہاں کا آپ کو کچھ بھی پتا نہیں، ایک لفظ بھی نہیں پتا، اور بتانے والا بھی کوئی نہ ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں، ہائے کاش کوئی میرا مل جائے، کوئی واقف کار مل جائے، کوئی تو ہو، کوئی مجھے گائیڈ کر دے یہاں پہ. تو وہ دنیا جو ہے وہ یہ اس زندگی کی سرحد سے، دنیا کی سرحد سے آپ نکل گئے، اس بارڈر کو کراس کر گئے نا، تو وہ ایک نیو ورلڈ ہے. اب وہاں پہ تو کوئی ساتھی نہیں ہے نا، تو ان کا، ان کے ساتھی وہ فرشتے ہو جائیں گے، وہ گائیڈ کریں گے، تسلیاں دیں گے. تم کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں خوف کھاتے ہو؟ کیوں گھبرا رہے ہو؟ غم نہ کرو. اور پھر جب انسان قبر میں جائے گا، تو آپ کو پتا ہے قبر بھی بڑا دہشت ناک ایک جگہ ہے. اب ایسی جگہ کے اندر بھی انسان ایک نئی مخلوق سے ملے گا، منکر نکیر، جو کبھی نہ دیکھے نہ کبھی ان کو سننے میں جو آتا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو دیکھنا ہے وہ تو انسان نے کبھی ایسی مخلوق نہیں دیکھی. دیکھنا واللہ عالم کیسا ہوگا. تو جب وہ ان سے ملاقات کریں گے تب بھی یہ ان کے ساتھ ہوں گے، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں نا. آپ خود سوچیں کہ جس کے ساتھ یہ فرشتے ہو جائیں، تو پھر ان کا تو ساتھی، جہاں پہ سارے ساتھی ختم ہو گئے، سارے پیارے یعنی جتنے رشتے تھے وہ کٹ ہو گئے نا. قبر میں چلا گیا انسان تو رشتہ دار بھی دفنا کے چلے گئے واپس، وہ تو اکیلا ہے وہاں پہ. اب ایسے وقت میں یہ فرشتے ساتھ ہیں، تم نہ غم کھاؤ. اور پھر جب قبر سے اٹھے گا، وہ قبر سے اٹھنے والا بھی منظر بہت ہی دہشتناک ہے. اب آپ خود سوچیں گے جب انسان قبر سے اٹھے گا، ہر طرف افرا تفری کا عالم ہے، لوگ بھاگ دوڑ رہے ہیں، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے. ایسے وقت میں جب انسان قبر سے اٹھے گا نا، تو جو مجرم ہوگا اس کو تو دائیں بائیں سے رشتے دبوچ لیں گے، جیسے کرمنلز کو پکڑ لیتے. لیکن جو ایسے نیک لوگ ہوں گے نا، ان کے ساتھ یہ ایسے آ جائیں گے، یہ والے فرشتے، جیسے باڈی گارڈز ہوتے ہیں، جیسے وی آئی پی لوگوں کے پیچھے پیچھے نہیں باڈی گارڈز کرتے، ساتھ 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 ان کے ہوتے. تو حشر کی جو گھبراہٹیں ہوں گی، جو افراتفریاں ہوں گی، چیخو پکار ہوگی، ادھر ادھر بھاگ دوڑ ہوگی، کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوگا، ایسے سخت خوف کے عالم میں وہ ان کو تسلیاں دیں گے، نہیں نہیں تم نہ ڈرو، تم نہیں گھبراؤ، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم سیف ہو. ابشروا بالجنت اللتی کنتم توعدون، تم خوشخبری سن لو جنت کی. موت کے وقت میں بھی خوشخبری دیں گے. دیکھیں نا، وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے. تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم تو موت سے بڑی نفرت کرتے، کیونکہ موت کے بعد ہی تو اللہ سے ملاقات ہوگی نا، تو کیا مطلب ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں جن کو اللہ سے ملنا پسند نہیں؟ یعنی جو اللہ سے ملنے سے محبت رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے سے محبت رکھتا ہے. تو انہوں نے جب یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ موت سے یعنی محبت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے پاس ایسے فرشتے آئیں گے اور وہ کہیں گے نا اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو اور اس جنت کی طرف چلو، اللہ تم سے راضی ہے، تو ان کو شوق ہوگا پھر اللہ سے ملنے کا، پھر ان کی روح نکلے گی جلدی. اور فاسق اور فاجر کو تو آپ کو پتا ہے موت کے بعد عذاب کی خبر دی جائے گی، یہی فرشتے آگے کہیں گے اب عذاب ہے تمہارے لیے آگے جہنم ہے، تو وہ تو اللہ سے ملاقات سے کراہت محسوس کرے گا نا، تو اللہ بھی نہیں اس سے ملنا چاہتا پھر. تو یہ اس وقت بھی آ کے خوشخبریاں دیں گے، چلو جنت کی طرف جانا ہے. تو وہ پھر، وہ عمل بڑا سخت ہے موت کا، ہر ایک کے لیے سخت ہے، لیکن ان کے لیے اس لیے آسانی ہو جائے گی کہ جس کو پتا ہے کہ آگے اتنی مجھے جنت ملنے والی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے، وہ کتنا آسانی سے اس کی روح نکلے گی، آسانی سے وہ جو ہے نا روح خوشی سے نکلے گی، کیونکہ اس کو آگے جو اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں उसको ग्लैड टाइडिंग्स मिल रही हैं, तो वो तो जाना चाहेगी ना। तो ये मौत के वक्त भी आके ये कह रहे हैं, फिर कब्र में भी आके ये तसल्लियां दे रहे हैं, फिर हशर में भी ऐसे बॉडीगार्ड साथ 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 होंगे सारे मरहलों में, जो पुल सिरात है, जो जब हशर का मैदान है, जो उस वक्त की घबराहटें हैं, वो साथ साथ होंगे। फिक्र ना करो तुम। अब देखिए, हम इंसान ने जितना भी अच्छा अमल किया, हालांकि ये दुनिया में वो थे जिन्होंने सारी जिंदगी इस पे इस्तकामत की कि रब्बुन अल्लाह, लेकिन वहां पे कोई कितना भी अच्छा अमल करके आया हो, आपको पता है ना, घबराहट तो इतनी ज्यादा होगी, अंबिया घबरा रहे होंगे तो और कहीं इतने बड़े मकाम वाले, तो आम लोगों के तो घबराहटों का आलम सोचे कितना होगा। क्योंकि जाहिर है, जितना भी इंसान ने अच्छा काम किया हो, रिजल्ट वाले दिन हर एक बंदे के पसीने छूटे होते हैं कि पता नहीं अब क्या हो मेरे साथ। तो ये सारे टाइम्स में वहां पे भी उनके साथ में कब्र, मौत, हशर, सब जगहों पे साथ 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 साथ। आप बताएं, कोई भी और दोस्ती ऐसी हो सकती है? कोई भी और ताल्लुक ऐसा हो सकता है कि जो इस तरह साथ साथ रहे? बेशक जो यानी ऐसे दोस्त हैं जो कि दुनिया के नेक दोस्त हैं, वो भी वहां पे साथ होंगे, लेकिन आप बताएं, जब कब्र में इंसान जाता है तो जितना मर्जी नेक दोस्त हो, वो साथ तो नहीं जा सकता ना। इसी तरह हशर में उठ के हर एक को अफरा तफरी पड़ी होगी, अपनी पड़ी होगी, कोई नेक दोस्तों को भी थोड़ी नेक दोस्तों को दिलासा देने का होश रहेगा। उस वक्त ये कहेंगे, तुम ना गम करो, फिक्र ना करो, तुम हम तुम्हारे साथी हैं, तुम ये सुनो खुशखबरी, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अब ये खुशखबरी देने से क्या होगा? खुशखबरी जो होती है वो इंसान को दिलासा देती है, तसल्ली देती है, बस तुम जन्नत में पहुंचने वाले हो बस। तो ये कितनी प्यारी दोस्ती है। तो फरिश्ते दोस्त हैं वो जो अर्श के गिर्द तवाफ कर रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, वो भी ऐसे लोगों के लिए दुआएं करते हैं। और देखो कि किस तरह से ये किन मुश्किल मरहलों में इंसान के साथ होंगे। नहनु औलियाउकुम फिल हयात दुनिया। अभी इसकी तरफ आते हैं दोबारा, हम इस्तकामत की तरफ थोड़ा सा आगे देख लें कि ये कहाँ कहाँ दोस्त हैं। हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया की जिंदगी में भी, व फिल आखिरा और आखिरत में भी। सुबहान अल्लाह, यानी ये तीन मरहले तो मैंने आपको बताए ना, कि जिनमें वो आके बोलेंगे, बात करेंगे, ये ऐलानिया कहेंगे ना, लेकिन उसके अलावा वो कहते हैं, हम तो तुम्हारे दुनिया में भी दोस्त थे, दुनिया की जिंदगी में भी। कब दुनिया की जिंदगी में दोस्त होते हैं? आपको पता चलता है इनकी दोस्ती का? ये कैसी दोस्ती है? दोस्त तो मतलब वो तो हम दोस्त समझते हैं जो आए हमारे साथ कोई बात करे, हमारे साथ कुछ, हम जिनके साथ कुछ शेयर करें, कोई उनको कोई दुख सुख अपना सुनाए, कोई कतारसिस हो हमारा, कोई कोई गम ख्वार हो, गम में हमें बांटने वाला हमारे, तो हम इसको दोस्ती कहते हैं, है ना। तो ये कैसे दोस्त है? वो कहते हैं हम तुम्हारे औलिया हैं। दोस्ती असल में इस तरह से है कि ये वो दोस्त हैं कि आपको कुछ बोलना भी नहीं पड़ता और वो जान भी जाते हैं, और अंदर ही अंदर तसल्लियां देते हैं, अंदर ही अंदर गमखारी करते हैं। इनके कहने का पता नहीं चलेगा कि वो सामने खड़े होके आगे कहेंगे कि भाई गम ना करो, फिक्र ना करो, बल्कि वो अंदर दिल में डालते हैं। तो देखें, ये दुनिया में भी तसल्लियां देते हैं। जैसे आपको पढ़ा था ना आपने, कि बुरे लोगों के दोस्त शैतान होते हैं। वो क्या करते हैं? उनके दिलों में वसवसे और अपनी शैतानी ख्यालात, शैतानी प्रोग्राम, प्लान्स, ये सब डालते हैं उनके दिलों में। इसी तरह ऐसे लोगों के दोस्त फरिश्ते हैं कि जो आखिरत में तो वो सामने आके ये कहेंगे, मगर दुनिया की जिंदगी में भी ये दिलों के अंदर तसल्लियां डालते हैं, नेकी के ख्यालात डालते हैं, नेकी पे जमने के लिए हिम्मत हौसला देते हैं, बकअप करते हैं, इनकरेज करते हैं। मजा ही बात। जैसे शयातीन जो है वो अपने दोस्तों के लिए बुरे अमाल को अच्छा बना बना के दिखाते हैं ना, तो ये इनकी दोस्ती क्या है कि दुनिया की जिंदगी में इंसान को जो नेक अमाल है, जो करने से वो डरता है, खौफ खाता है, घबराता है, तो उसको तसल्ली देती, हौसला बताती। उसके साथ रहते हैं, बार बार आके हौसले देते रहते हैं। देखिए ना, ततनज्जलु अलैहिमुल मलाइका, बार बार उतरते हैं वो, इंसान भटके नहीं, पीछे नहीं हो। देखिए, कोई इंसान को एनकरेज करने वाला हो, तसलियां देने वाला हो, तो वो उसका हौसला कितना बढ़ जाता है ना। तो वो कहते हैं, हम तुम्हारे साथ जुदा उस वक्त भी नहीं हुए थे, दुनिया में भी नहीं हुए थे, दुनिया में भी हम तुम्हारे दोस्त थे, और अब भी हम तुम्हारे दोस्त हैं। तो ये कैसे जिगरी दोस्त हैं, ये कैसे दोस्त हैं, जिनकी दोस्ती कहाँ तक निभ रही है, किधर तक जा रही है। तो फिर किसकी दोस्ती अच्छी है, शयातीन की, झूठे रहनुमाओं की, या इनकी। तो अच्छा, दुनिया में इनकी दोस्ती का एक और भी रंग होता है। दुनिया में जब इंसान अल्लाह की तरफ आने लगता है ना, तो उसके दिल में बहुत बहुत ख्याल आते हैं, फलां मुझे छोड़ देगा, फलां मेरे से नाराज हो जाएगा, फलां का क्या करूं, मेरा तो फिर कोई दोस्त ही नहीं रह जाएगा। तो ये कहते हैं, हम जो तुम्हारे दोस्त हैं, जब हम तुम्हारे दोस्त हैं तो फिर क्या फिक्र है, फिर क्यों फिक्र करते हो, फिर क्यों गम करते हो। आप देखें, आपको एक सीरत से मिसाल मिलेगी कि फरिश्ते वाकई दुनिया में भी उतरे, बदर में उतरे थे ना, जंगे बदर में। कैसे सहाबा को महसूस हुआ, कैसे सकीनत तारी हो गई, एक फीलिंग सी आई ना, तो सामने नहीं खड़े हो जाते कि वो आगे मुंह पे खड़े होकर कहें हम तुम्हारे दोस्त हैं। दुनिया में कैसे वो दोस्ती निभाएंगे, इस तरह सकीनत दे के, ढारस बंधा के, मत डरो, दीन पे चलने में जो मुश्किलात आ रही है उनसे घबराओ नहीं, सारी मुश्किलें आसान होंगी, उनको डरने नहीं देते। तो जो तन्हाई इंसान महसूस करता है ना, अकेलापन महसूस करता है कि दीन पे आके तो मैं अकेली हो गई, तो वो उसको हौसला देते हैं। जो इंसान सोचता है कि पता नहीं मुझे कितना नुकसान हो गया, मैं इस तरफ आ गई, तो उसको तसल्ली देते हैं। जब इंसान के प्यारे उसका साथ छोड़ जाते हैं ना, और अगर आप मक्का के माहौल में सोचें इसको, तो वहां पे तो घर घर में, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं माँ बाप साथ छोड़ के जा रहे हैं, कहीं शौहर साथ छोड़ के जा रहा है, औरत अकेली रह गई है, कहीं ऐसा हो रहा है कि औलाद साथ छोड़ रही है, यूं लगता था कि मुसलमान होना कोई जुर्म हो गया। तो अल्लाह ताला ने देखिए अपने फरिश्तों की कैसे ड्यूटी लगा दी, उनसे कहलवाया सबर करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम फिक्र ना करो, तुम अकेले नहीं हो। सुभानअल्लाह। तो जब इंसान के प्यारे भी साथ छोड़ जाएं, जिसको जहां पे भी कोई मुश्किल हो रही हो दीन पे चलने के में, तो बजाय इसके कि वो इस रास्ते को छोड़ जाए, वो ये पहचाने कि फरिश्ते उसके दोस्त हैं। जब दुनिया वाले कहते हैं ना कि अब तुम्हारी हमारी दोस्ती खत्म है, अब तुम्हारे रास्ते जुदा, मेरे रास्ते जुदा, तो उनके छोड़ने की वजह से गमगीन ना हो। अल्लाह ने देखे कितने प्यारे दोस्त दे दिए, चलते तो चले जाएं, जो भी मुश्किलात आए एक के बाद एक, निकलते चले जाएं उसमें से, गुजरते चले जाएं, ना किसी की तनकीद से डरे, ना किसी के ताने देने से, ना किसी की नफरतों से, ना किसी की मोहब्बत आपको हिला दे। अभी मोहब्बत करने वाले रिश्ते भी इंसान को शेक कर देते। तो इंसान ने हर एक तरह के हालात में चलते चले जाना है इस्तकामत के साथ, तभी है ये बशारते मिलती, तभी इंसान के ये दोस्त बनते हैं। असल में जो कहता है ना अल्लाह मेरा रब है, वो अल्लाह की रजा चाहता है, अल्लाह की खुशी चाहता है, इसलिए फिर वो जो भी फैसले करेगा ना अल्लाह की रजा के मुताबिक करेगा, फिर वो अपनी जिंदगी को भी उसके कानून के मुताबिक चलाएगा ना, उसकी पूरी जिंदगी ऐसे नजर आ रही होगी कि देखने वाले को पता चल जाए कि इसने ये कहा हुआ है कि मेरा रब अल्लाह है, और वो जमा भी हो। और जमता इंसान कब है, जब उसका दिल मुतमईन हो जाता है किसी चीज पे, कोई शक नहीं रहता उसको, तब इंसान जम जाता है ना। अगर आप शेकी हैं तो वो जमना तो ना हुआ, शेकी नहीं होना, शक नहीं होना चाहिए अंदर, जो भी चीज है उसको एक्सेप्ट करें। तो इस्तकामत के लिए आपको अपने अंदर की बेचैनी, आपको अपने अंदर के शकूक व शुभात, इनको खत्म करना पड़ेगा। और जो आपके ट्रेंड्स हैं, जो मेलानात हैं, अगर उनको नहीं बदला तो आप बदले नहीं हैं, फिर इस्तकामत नहीं आएगी। आपके जो इंटरेस्ट हैं, आपके जो शौक हैं, वो बदलने चाहिए। जब इंसान कहता है ना रब्बुन अल्लाह, तो बहुत बड़ी चेंज आ जाती है। हो सकता है आपने आज से पहले कहा हो, लेकिन जब कुरान पढ़ने के बाद जब आप कहते हैं रब्बुन अल्लाह, बहुत बड़ी चेंज आप महसूस करते हैं। अब तो डायरेक्शन ठीक होती भी महसूस हो रही है ना, लेकिन कभी कभी अगर आप देखें तो अंदर वो कई चीजें दफन हुई हुई हैं, वो वक्त आने पे बार बार ऊपर आती हैं, सर उठाती हैं, है ना। आप अगर अपनी पुरानी एक्टिविटीज देखें तो वो अब काफी हद तक तो बदल गई होंगी, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं है वो। तो अपने इंटरेस्ट लिखें कहीं, और ये देखें कि जितना जितना आप का रुख अल्लाह की तरफ होता जाता है ना, आप उतना ही आपके इंटरेस्ट चेंज होते जाते हैं, उतना ही आप अल्लाह की तरफ झुकते जाएंगे, उतना ज्यादा आप जमते जाएंगे। तो अपने इंटरेस्ट का रुख आपको मोड़ना है। अब ये नहीं मैं कहती कि अपने जो पुराने इंटरेस्ट थे उनको बिल्कुल छोड़ देना है, ये रुख मोड़ देना। मिसाल के तौर पर कोई मिसाल लें आप, मसलन आपको डाइजेस्ट पढ़ने का बहुत शौक, अब क्या करें, कैसे इंटरेस्ट बदलेंगे? अब उसकी जगह कुरान पढ़ने लगे, तो आप कहेंगे हम तो कुरान पहले ही पढ़ रहे। नहीं, फिर आपके अंदर इसका मतलब रीडिंग का बहुत सलाहियत है। आप कोई ऐसा लिटरेचर पढ़ें जो अच्छी चीजें हों, जो आपको अल्लाह से और करीब करें। तो डायरेक्शन बदलनी है। अगर आपको मसलन डेकोरेशन करने का बहुत शौक है, इंटीरियर डेकोरेशन, तो अब आप कैसे उसका रुख मोड़ेंगे? अपने इंटरेस्ट को मोड़ना है ना, ताकि हम जम जाएं। लोगों के इंटीरियर डेकोरेशन शुरू कर दें, लोगों में अच्छे अखलाक पैदा करना शुरू कर दें। ये सोचें किस तरह लोगों को डेकोरेट करेंगे, अच्छे रवैये उनको कैसे सिखाएंगे। ये ज्यादा नहीं खूबसूरत काम? पहले आप एक घर डेकोरेट करती है, आप सारा माहौल आप डेकोरेट कर देंगे। अगर टीवी देखने का आपको बहुत शौक है तो ऐसे प्रोग्राम देखें जो अल्लाह ताला की इस कायनात पे गौर व फिक्र करने के हवाले से हो। हर चीज आती है, अब तो मीडिया में हर चीज मौजूद होती है। आप ऐसे सीन्स को, ऐसी चीजों को आप सेव करें और उनको प्रोजेक्टर के जरिए दूसरों को भी दिखाएं, उसकी स्लाइड्स बनाएं, दूसरों तक पहुंचाएं। आप देखेंगे हर सीन में आपको रब ही रब नजर आएगा। अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो अब नेचर को पेंट करें, अल्लाह की आयात को पेंट करें, उसको अच्छी जगह पर डेकोरेट करें। तो देखिए अपनी इंटरेस्ट बदलने की बहुत जरूरत है, अदरवाइज इस्तकामत नहीं आएगी, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको पहनने का बहुत शौक है, कपड़ों का बहुत शौक है, तो जरा थोड़ा सा ये देखें कि जन्नत के लिबास कैसे होंगे, वहां पे कैसे लिबास मिलेंगे। ना डिजाइन उनको कराना पड़ेगा, ना सिलवाने की मुश्किल होगी, ना धोने की, ना रखने की। तो वहां के लिए शिफ्टिंग कर दें। अगर आपको चैटिंग का बहुत शौक है तो चैट करें, लेकिन उस दौरान रब की बातें करें, वहां पे फ्रेंड्स बनाएं और उनसे बातचीत करें। हर जगह रब्बुन अल्लाह की बात होनी चाहिए। अगर आपको म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है तो आप उसकी जगह कुरान को खूबसूरत आवाजों में सुनना शुरू करते हैं, आपको बहुत सुकून मिलेगा। ऐसी नज़मों को सुने जो अल्लाह से ताल्लुक को आप मजबूत करें। अगर आपको हॉरर ये चीजें और ये देखने का शौक है, कोई हॉरर मूवीज देखने का शौक है, तो आप कयामत के हालात पढ़ लें। इससे ज्यादा हॉरर वाली बात कोई नहीं हो सकती। अगर आपको बातें करने का बहुत शौक है तो अल्लाह की बातें बहुत ज्यादा किया करें, दावा का काम करें, लोगों तक बातें पहुंचाएं अल्लाह की, मगर इररिलेवेंट बातें नहीं उसमें होनी चाहिए। तो आपके इंटरेस्ट अपनी जगह है, बिल्कुल जड़ से नहीं उखाड़ सकते कुछ इंटरेस्ट को, मगर उनका रुख बदलना है। अब पता चलना चाहिए कि रब्बुन अल्लाह कह दिया इसने, आपके सारे इंटरेस्ट बताने चाहिए, बोल बोल के बताएं कि इसने ये कह दिया हुआ है कि रब्बुन अल्लाह। तो जो ये चीजें हैं जो आपकी जमने के रास्ते में बैरियर बन जाती है ना, जो आपकी एक्टिविटीज हैं, जो आपकी ये हैं, बस इनका रुख मोड़ दें, आप देखेंगे कि आप के अंदर एक चेंज आ जाएगी। वही काम आपके आपके अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करेंगे। तो जब इंसान इस्तकामत से चलने लगता है ना, जब इंसान मजबूत हो जाता है, तो फरिश्तों के दिलासे भी आते हैं, फिर खुशखबरियां भी उसको मिलने लगती हैं, फिर उसकी जिंदगी भी बदलती है, फिर उसके लिए जन्नत के वादे भी हैं। और मोमिन के लिए इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि उसको जन्नत की खुशखबरी मिले। तो ये फरिश्ते जो है ना, मोमिनों का हौसला बनाने के लिए हमेशा आसमानों से उतरते रहते हैं, उनका साथ देने के लिए, उनको जब वो गमगीन होते हैं उनके गम को कम करने के लिए। इससे हम देखें कि कभी कभी ऐसे होता है कि कोई ऐसी बात होती है जो हमें बड़ी गमगीन करने वाली होती है, लेकिन फिर ऐसे जैसे दिल पे किसी ने मरहम रख दिया, जैसे कोई सुकून सा आ गया, जैसे फिर इंसान कहने लगता है कि मुझे फिक्र करने की क्या बात है, ये कहाँ से ये तसल्ली आई। ये जब आपको तसल्ली देने वाले आपके दोस्त उतरे, तो उन्होंने ये तसल्लियां दी। तो जब रब्बुन अल्लाह कहा है ना, तो होना तो ये चाहिए कि अब हम ऐसे जम जाएं कि हर हमारी सोच में ये हो रब्बुन अल्लाह, हमारा एक एक सेल जो है ना, एक एक बॉडी का सेल, ये कहे रब्बुन अल्लाह रब्बुन अल्लाह रब्बुन अल्लाह, जुबान से भी कहें, आंख से भी कहें, कान से भी कहें, जहन भी कहे, एक एक जर्रा कहे। और ये प्रैक्टिस से आएंगी, जितना ज्यादा आप सीखेंगे, जितना ज्यादा आप ये कुरान के करीब होंगे, आप देखेंगे उतना ही ज्यादा ये चीज, इस पे आप जमते चले जाएंगे। आप महसूस नहीं करते पहले से अब में फर्क महसूस नहीं करते? जरूर आपको फर्क लगता होगा ना। तो ये किसने फर्क डाला? ये फिर मैं उसी बात की तरफ आऊंगी, ये वही कलाम जिसने 1400 साल पहले फर्क डाला था, उसी ने आज डाला, वही आज डालेगा, आगे भी वही इस्तकामत देगा आपको। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें, हमारे लिए इस्तकामत के रास्ते की रुकावट बनती हैं, जो हमें इस रास्ते में बार बार हमें यानी गिराने के लिए खड़ी होती हैं। जब इंसान कह देता है ना रब्बुन अल्लाह, वो जमना चाहता है, लेकिन एक चीज इसमें जो रुकावट, बहुत सारी चीजें, कुछ चीजों का मैं बताऊंगी आपको। एक तो ये जो इंसान के अजीज व अकारिब होते हैं, कहीं बहन भाई आ जाते हैं, कहीं पेरेंट्स आ जाते हैं, कहीं हस्बैंड है, कहीं बच्चे हैं, कहीं दोस्त है, कहीं बरादरी है, वो जब सामने खड़े हो जाते हैं ना, फिर इंसान उनसे हार मान जाता है। फिर इंसान कहता है क्या करें, बच्चे ये कहते हैं, क्या करें, हस्बैंड ये कहते हैं, क्या करें, फलां ये कहता है। अब आप देख लें, इम्तिहान आ गया ना। अब इस टेस्ट में आपने बताना है कि रब्बुन अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है, किसी भी रुकावट से रुक नहीं जाना, पहाड़ की तरह डट जाना है। और हमारे तो हाल ये होता है ना कि जब दीन की बात आ जाती है ना, तो फिर वैसे भी मलबा हस्बैंड पे डाल देते हैं, हस्बैंड ने ये कहा है, या बच्चों पे डालते हैं, क्या करें, बच्चे ही नहीं मानते, दिल अपना चाह रहा होता है, और जहां अपनी मनमानी होती है वहां पे हम कैसे अकड़ जाते हैं। फिर इसी तरह एक रुकावट बनती है ये माल, माल की मोहब्बत इंसान को ऐसा तोड़ती है कि अच्छा भला इंसान चल रहा होता है, लेकिन कहीं बहुत पता चला कि यहाँ से फायदा मिल रहा है, तो चाहे वो हराम का ही है, इंसान फिसल जाता है, चलो कोई बात नहीं, बाद में तौबा कर लेंगे। कभी कभी मुसीबतें परेशानियां भी इंसान के रास्ते की रुकावट बन जाती है। अभी मसलन किसी की वफात हो गई, कोई डेथ हो गई, सब दीन भी भूल गए, सब भूल गए कि क्या सीखा था, कोई इस्तकामत नहीं रही। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई अल्लाह की रजा में राजी होना नहीं रहा, कोई ये नहीं याद रहा कि रब्बुन अल्लाह। इसी तरह खुशी में भी इंसान आपे से बाहर हो जाता है। बहुत दफा आप देखें, चलते चलते दीन पे अच्छे भले चल रहे हैं, लेकिन कोई शादी आ गई, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब तो क्या करें ना, फिर अब तो शादी का मामला है, अब तो ये फंक्शन है, अब क्या करेंगे, अब तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हम तो छोटी छोटी चीजों पे फिसल जाते हैं। और इसी तरह कभी ऐसा भी होता है कि जो इख्तदार में होते हैं उनकी सख्तियां इंसान को शेकी कर देती हैं। उस जमाने में मक्का के दौर में देख लें तो जो बड़े बड़े सरदार थे वो गुलामों पे और कमजोरों पे और इनके ऊपर कैसा टॉर्चर कर रहे थे, और आज भी होता है। हम एक दो दिन कुछ ऐसी खबरें सुन लें, कोई ऐसी न्यूज़ सुन लें तो वहीं से वापस पड़ जाते हैं। भाई देखो, हम तो मस्जिद नहीं जा सकते, हमने तो ये सुना था कि भाई आजकल तो मस्जिद वगैरह को बहुत हो रहा है तो इसलिए हम तो नहीं जा सकते। तो बस छोटी छोटी बातों के ऊपर रास्ता बदल लेते हैं, डर जाते हैं फौरन। आपको पता है कि एक इस्तकामत की आपको मिसाल आपने सुनी होगी, आप तो दोबारा आपके सामने रखती हूँ। वो भी एक औरत थी, हम भी औरतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों की सैर पे गए थे ना मेराज पे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम साथ थे, रास्ते में बड़ी उम्दा बहुत प्यारी खुशबू आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, ऐ जिब्राईल, ये इतनी प्यारी खुशबू ये किस चीज की है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये खुशबू एक औरत और उसके बच्चों की है। वो औरत जो फिरौन की बेटी की मशाता थी, खादमा थी, मशाता यानी कंघी करने वाली थी, ब्यूटिशियन होगी, उसकी बेटी की कंघी किया करती थी। तो खादमा जो थी वो मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आई भी थी, मोमिना थी। एक दिन वो फिरौन की बेटी की कंघी कर रही थी कि उसके हाथ से कंघी गिर गई, कहने लगी बिस्मिल्ला। इस पे वो लड़की बड़ी हैरान हुई, शहजादी, उसने कहा रब तो मेरा बाप है। फिरौन कहता था ना, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब आला रब हूं। तो कहने लगी रब तो मेरा बाप है, तुम किसका कह रही हो? वो कहती ला नहीं, तुम्हारा बाप नहीं, रब्बी व रब्बुक अल्लाह, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। कहने लगी अच्छा, अपने बाप को शिकायत लगाऊं? कति लगा दो, जिसको मर्जी लगा दो। अब कोई होती, कोई और होती तो वहीं पे डर जाती और कहती कि ना बाबा, फिरौन पे जुल्म का तो सबको पता है, पकड़ी गई तो क्या होगा। उसने जाके फिरौन को शिकायत लगा दी, फिरौन का पता चला, उसने फौरन तलब कर लिया। उसने कहा ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम किसी और को रब मानती हो? कहती हाँ, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। वो कहता बाज आ जाओ वरना मैं बड़ी बुरी सजा दूंगा तुम्हें। कहती जो मर्जी कर लो मगर मेरा रब तो वही है। फिरौन को पता चलता कि इसके चार बच्चे भी हैं। बच्चों की मां को एक्सप्लॉइट करना बहुत ही आसान काम है, माएं बच्चों से कितनी जल्दी वो हो जाती है ना एक्सप्लॉइट, बच्चों का वास्ता, बच्चों की कोई वास्ता दे के कोई बात हो, बच्चों की खातिर कोई काम करना हो, बच्चों की मर्जी कोई हो, औलाद का, हम सब माएं हैं तो औलाद का आप सोच लें कि उनकी जरा सी भी कोई ख्वाहिश होती है तो माँ कहती है कि बस फौरन हाजिर कर दो, अब इनका दिल ना टूट जाए, उनकी खातिर जुल्म करने को भी तैयार हो जाती है, ज्यादतियां भी करती हैं माएं अपनी औलाद की खातिर, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते हैं औलाद की खातिर। भाई ये भी एक माँ थी ना, कि फिरौन ने कहा इसके बच्चों को ले आओ यहाँ पे, बच्चों को बुलवा लिया और ये आग जलाई, उसके ऊपर एक देग रखी जिसमें तेल को खूब गर्म किया। जब तेल बिल्कुल, तेल की आपको पता है कि जरा सी छींट भी कैसी होती है, आग से भी ज्यादा आप फ्राई जब करने लगते हैं चीजें तो कितना केयरफुल होते हैं। अब ये सामने रख दिया तो कहने लगा अब भी बाज आ जा वरना मैं तेरे बच्चों को इसमें डाल दूंगा। अब ये बात कहना बहुत आसान है लेकिन जरा इमेजिन करें, और एक कमजोर औरत खड़ी है जिसको पता है कि इसने जो कहा है कर भी देगा, इसको नहीं किसी का डर। आगे से कहती क्या है, जो करना है कर लो यार, मेरा रब तो वही है। जब फिरौन ने फैसला दिया, उसके उसकी सजा का ऐलान किया, तो कहने लगी बस मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, तुमने जो करना है वो अपना तुम करो, लेकिन मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि जब हम मर जाए, मैं और मेरे बच्चे, हम सबको एक साथ जमा करके दफन करना। मैंने लगा अच्छा ठीक है, बड़े बच्चे को उठाते माँ के सामने उस देग में डाल देते, एक लम्हे भर में वो जल के खत्म हो जाता है। वो भी तो चीखा होगा, वो भी तो रोया होगा, और माँ देख रही है सामने खड़ी। फिर पूछता है मानती है कि नहीं मानती, कह लगी नहीं। दूसरे को उठाते उसे भी फेंक देते, वो भी पलक झपकने में जल के खत्म हो गया। ये बात मामूली नहीं है, इस एक माँ के सामने उसकी मासूम औलाद को जिंदा देग में डाला जाए। अब तीसरे को उठाते हैं, उसको भी उसी में फेंक दिया। अब आखिरी रह गया जो सबसे छोटा बच्चा गोद में दूध पीता था, उसको छीनने लगते हैं तो अब माँ के कदम डगमगाए। सारे बच्चों वाले हैं, देखिए वो सबसे छोटा बच्चा होता है ना आपका घर में, वो हमेशा छोटा ही रहता है और माँ बाप को वो बहुत प्यारा लगता है, वो लाडला रहता है। तो ये तो वैसे ही दूध पीता बच्चा था, इतने बच्चे को तो पे तो गैरों को भी रहम आता है और प्यार आता है। किसी का दूध पीता बच्चा सारे उसको प्यार करते हैं, तो माँ को कितना प्यार होता है। अब करीब था कि माँ की इस्तकामत का दामन हाथ से छूट जाता, कि अल्लाह ताला ने उस बच्चे को कुव्वते गोयाई दी। वो कहता है मेरी माँ डरो नहीं, कूद जाओ, दुनिया का अजाब आखरत के अजाब से बहुत हल्का है। और वो उठाकर उस बच्चे को डाल देते हैं, और उसके बाद इस औरत को भी। फिर उनकी जब हड्डियां, वो तो खत्म हो गया, उनका गोश्त भी खत्म, उनकी हड्डियों को लेकर एक जगह जमा करके दफन कर दिया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये उस जगह से खुशबू आ रही है, ये है इस्तकामत, जो जान जाए तो जाए, कुछ भी हो जाए मैंने हिलना नहीं है, मैंने नहीं अपने इस रास्ते को छोड़ना। जब कह दिया मेरा रब अल्लाह है तो उसका हर हुक्म मेरे ऊपर चलेगा, उसकी इताअत, और जिंदगी भर के लिए करनी है उसकी इताअत, जो उसने हुक्म दे दिया उससे टलना नहीं है, जिंदगी भर उस पर कायम रहना है। ये जो एक दिन कुछ और अगले दिन कुछ और तीसरे दिन कुछ और चौथे दिन कुछ, ये लूमड़ी की तरह ये काम नहीं करने। इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो तो है दुआ किया करें, दुआ कि अल्लाह इस्तकामत पे रखना, अल्लाह जो आपने तौफीक दी भी अल्लाह ताला इस पे कायम रखना। अब इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों के उलट फेर करने वाले मेरे दिल को अपने दीन पे जमा देना। और कुरान कहता है रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना, अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना बाद इसके कि तूने इनको हिदायत दे दी। फिर दूसरा इसमें नुस्खा ये है कि जो भी आप नेक काम करें ना, जो नेकी आपसे हो जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें उसमें, खुद बढ़ बढ़ के नहीं ये कहें कि हाँ हमने ये कर लिया और हम बड़े ये हो गए और हमने फलां काम कर रहे हैं और आज मैं ये भी कर रही हूँ और ये भी कर रही हूँ। नहीं, अल्लाह तेरा ही शुक्र है, तूने ही तौफीक दी, मेरी तौफीक से नहीं, मेरे करने से नहीं है, अल्लाह तूने ये दिया है तो मैं कर पा रही। फिर नंबर तीन, ये कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करें। इस ताल्लुक को जब तक आप कायम रखेंगे ना, ईमान में आप देखें इजाफा होता जाएगा, इस्तकामत आती जाएगी, मुसलसल ताल्लुक। ये नहीं है कि बस एक दफा पढ़ लिया खत्म कर लिया, हमने तो ये कोर्स किया हुआ है और हमने वो कोर्स किया हुआ है और उसके बाद सब छोड़ छाड़ के बैठे। ये कोर्स कोर्स कुछ चीज नहीं होती कि बस हमने खत्म कर लिया, बस कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, खत्म हो तो हमारी जान छूटे, इसकी फिक्र क्यों रहती है। ये तो वो सफर है जो जिंदगी भर नहीं अब खत्म होना, अब इसके ऊपर आ गए तो अब ये कहना है कि अब इसे ताल्लुक नहीं टूटेगा, जिस दिन आप देखेंगे इससे आपका ताल्लुक कमजोर होने लगेगा या इससे ताल्लुक टूट गया ना, आप देखेंगे आप मुतजलजल होने लगेंगे। यकीन करें, ये कुरान है, इस्तकामत देता है। फिर चौथी चीज इसमें यह है कि किताबो सुन्नत की मजलिसों में उठे बैठे इसका एहतमाम करें, ऐसी जगहों पे जाया करें जहां पे अल्लाह की बात हो रही है, दीन की बात हो रही है, कुरान की बात हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बात हो रही है, कोई हदीस सुनाई, ऐसी जगहों पे जाएं, ऐसी जगहों पे टिकट लेके जाना पड़े तब भी जाएं, उन लोगों के साथ बैठें, ऐसी मजलिसों का एहतमाम करें। तो ये आसान नहीं है इस्तकामत, इस्तकामत मुश्किल चीज है और इसको मुसलसल इसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। इसीलिए मौलाना अशरफ अली थानवी बार बार लिखते हैं ना कि मैं तो अपने आप को किसी हिंदू से और सिख से और ईसाई से बेहतर नहीं समझता जब तक कि ईमान की हालत में ही मैं दुनिया से रुखसत ना हो जाऊं। यानी क्या पता वो सिख या काफिर या हिंदू, क्या पता वो ईमान ले और ईमान की हालत में दुनिया से उठे और मैं पता नहीं किस हालत में उठूं, मुझे क्या पता है? तो हम नहीं जानते हैं, हमें नहीं पता कि हम किस हालत में दुनिया से जाते हैं, इसलिए इसे डरते रहें। आज अगर इस्तकामत है तो कल के लिए भी फिक्र होनी चाहिए कि अल्लाह इस पे कायम रखना, अल्लाह दिए रखना ये, और इसके लिए मुसलसल आपने कोशिश करते रहना। जब आपका दुश्मन नहीं हट रहा कोशिशें करने से, तो आप कैसे आराम से बैठ सकते हैं? दुश्मन तो इतना अलर्ट है कि वो तो कहता है कि रूह को निकलते तक, जब तक ये रूह निकल नहीं जाती वो अटैक करता रहता है, और सबसे ज्यादा अटैक किस वक्त करता है? मौत के वक्त। क्यों? उस वक्त क्यों करता है? इसलिए उसको पता है अब ये बॉर्डर क्रॉस करने वाला है, अगर ये बॉर्डर क्रॉस कर गया ईमान की हालत में मेरे हाथ से तो गया, दुनिया में जिंदगी में तो बुरे चांस आते रहेंगे ना, बार बार चांस आएंगे उसके लिए, बार बार आपको फिसलाने के मौके आते रहेंगे, लेकिन अब ये मौत का वक्त आ गया ना, अब ये जाने वाला, इसको पकड़ लो, ये हाथ अब ना आया तो गिर गया। और अगर इंसान ईमान के ऊपर चला जाता है तो वो फिर बुरा भला कहता है, रोता धोता है कि जो है ना क्यों ये चला गया, तुम्हारे हाथों से क्यों निकल गया, अपने साथियों को कहता है। तो ये इस्तकामत मरते दम तक चाहिए, इसीलिए तो फरिश्ते उस वक्त, क्योंकि वो बड़ा सेंसिटिव टाइम है, मौत का वक्त जो है ना बहुत सेंसिटिव वक्त है, उस वक्त वो उतरना शुरू हो जाते हैं। अभी मौत आई नहीं है, मौत का वक्त है, उस वक्त उतर उतर के उसको बशारतें दे रहे हैं, उसको तसल्लियां दे रहे हैं, गम ना करो, फिक्र ना करो, ना दुनिया के छूट जाने का भी ना गम करो कि हाय मेरे बच्चों का पीछे क्या होगा, हाय मेरे फलां का क्या होगा, दोस्तियों के ताल्लुकात के कट जाने का भी गम ना करो। देखो सुनो, तुम्हारे लिए तो अल्लाह ने जन्नत रखी थी और हम तुम्हारे साथी हैं दुनिया में भी आखिरत में भी। और पता है तुम्हें, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसकुम, और तुम्हारे लिए उस जन्नत में वो सब कुछ है, वो जो चाहेंगे वहां पे मिलेगा। कैसी प्यारी खुशखबरी है, कैसे प्यारे मैसेजेस हैं। वलकुम फीहा मा तदाउन, और तुम्हारे लिए उसमें वो है जो तुम मांगोगे। तो इंसान को कितनी तसल्ली होगी उस वक्त भी, वो आके इंसान को मुश्किल वक्त में, जब शैतान भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा उस वक्त वो आके ये बशारते दे, इंसान घबरा ना जाए उस वक्त, उसका ईमान मुतजलजल ना हो जाए। तो इंसान चाहता है ना कि मुश्किल वक्त में मुझे कोई दिलासा देने वाला हो, कोई तसल्लियां देने वाला, वो तसल्लियां देते हैं अल्लाह ताला अपनी तरह से, फरिश्ते उतार देता है, मगर ये उन्हीं के लिए है ना। इसकी कीमत क्या है बताएं, इन फरिश्तों की दोस्ती की कीमत क्या है? इस तकामत, ये बस कह दिया इसके ऊपर चलते रहे तो अल्लाह ताला उतारेगा। तो आप कहते होंगे जिंदगी में तो हमें नहीं पता चलता, महसूस नहीं होता, नहीं वो सामने ना भी आए तब भी वो जो दिल में डाल रहे हैं, जो तसल्लियां दिल में डाल रहे हैं, वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं वो फरिश्ते, जो ये सकीनत तारी हो रही है, जो ये इत्मीनान मिल रहा है, तो वो उस वक्त भी वो तसल्ली देंगे। नुज़ुलम मिन गफूर रहीम, ये मेहमानी है गफूर रहीम की तरफ से। वहां पे भी जाके अब आप सोचें कि जब हशर के मैदान से लेके पुल सिरात से गुजरेंगे, वहां पे भी पुल सिरात भी इतना मुश्किल मरहला है कि अंधेरा ही अंधेरा है और बाल के बराबर बारीक और तलवार से ज्यादा तेज एक जगह है, आज जिससे इंसान को गुजरना है, आप उस जगह पे भी वो खड़े होकर तसल्लियां दे रहे हैं कि ना घबराओ, ना गम करो, आगे बस जन्नत है, बस जन्नत आई भी है, बस तुम्हारा ठिकाना आ गया। अब ऐसे मौकों के ऊपर जो बड़े सेंसिटिव मौके हैं, तो अब आप देखें ये पुल सिरात आखिरत के पुल सिरात तो है ही है, अब वो पता दुनिया का पुल सिरात भी बड़ा बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। वो कैसे? क्योंकि शरीयत पे इस्तकामत ना, ये भी इतना ही मुश्किल है, ये भी एक पुल सिरात है। ये इंसान अल्लाह के हुक्मों के ऊपर इस्तकामत से चलता रहे, इनको ना तोड़े, क्योंकि कई चीजें हमारे माशरे में, हमारे रस्म व रिवाज में, हमारे कल्चर में ऐसी हैं जो कि बहुत यानी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अल्लाह के दीन के मुताबिक वो सही नहीं है। अब उनको जब आप डिनाई करते हैं और आप जब कहते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं करना, तो सब आपके पीछे पड़ जाते हैं। ये भी कोई काम नहीं है, ये भी पुल सिरात है, यहाँ पे भी तसल्ली है और उस पुल सिरात पे भी कि आसानी से गुजर जाओ। ये पुल सिरात क्या है? अल्लाह के हर हुक्म को मानना, उस पर अमल करना और हर उस काम से रुकना जिसे अल्लाह ताला ने मना किया। तो वहां पे फिर उनकी तसल्लियों के उसमें वो पुल सिरात क्रॉस करेंगे और जन्नत तक पहुंचा के आएंगे। वो बस यहां तक दुनिया से शुरू हुए और जन्नत तक पहुंचा के आए। अब आप बताएं किसको दोस्त बनाएंगे? तो ये दोस्ती ऐसे ही मुफ्त में नहीं मिली, लेकिन मिल जाती। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, रब्बुन अल्लाह सुमस्तकाम, ये फरिश्ते तब दोस्त बनेंगे। और कितनी लॉन्ग लास्टिंग दोस्ती है, कितने वफादार हैं ये, हर हर मरहले पे, हर हर स्टेज पे ये साथ है। अब जब जन्नत में इंसान एंटर हो गया तो फिर इनका काम खत्म हुआ, फिर वहां पे और दोस्तियां, फिर वहां पे तो कोई गम और खौफ है ही नहीं है वैसे ही। तो कहेंगे नुज़ुलम में गफूर रहीम, ये अल्लाह की तरफ से मेहमानी है। क्या मेहमानी है? कि जो तुम्हारा दिल चाहे जन्नत में जाओ, जो तुम चाहो वो मिलेगा, जो तुम्हारे नफ्स इश्तेहा करें, यानी जो तुम्हारी तमन्ना दिल में आए। देखिए एक है मा तश्तही और एक है मा तदाउन, एक है जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे दिल में तमन्ना है, ठीक है, जो दिल में ख्याल अभी आया है वो भी पूरा हो रहा है, और जो तुम मांगो मुंह से बोलेगा वो भी पूरा होगा। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे तो सारे नजूमियों ने इश्तिहारों में अपने लिखा होगा ना, हर तमन्ना पूरी होगी। हालांकि कौन सी तमन्ना यहाँ पूरी हो सकती है? ये तो दुनिया है ही नाकिस। इंसान एक ख्वाहिश करता है, उसके पीछे भागता है, सारी जिंदगी भागता रहता है, वो पूरी होती है तो दूसरी ख्वाहिश शुरू हो जाती है, और फिर पता चलता है कि जिस चीज के पीछे भाग रहा था उसमें तो कोई फन नहीं है, कोई मजा नहीं है, वो तो इतनी बड़ी चीज नहीं थी जिसके पीछे मैं भाग रहा था, सारा शौक उसका खत्म हो जाता है, वो चीज भी पुरानी हो जाती है। तो दुनिया ऐसी जगह नहीं है कि इंसान इसमें भाग भाग के और अपने आप को हलकान कर ले, क्योंकि इंसान की सोच तो बहुत आगे निकल जाती है ना, उसकी ख्वाहिशात तो बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से चेंज होती है और बहुत ज्यादा है, जबकि ये दुनिया इतनी नाकस है, यहाँ पे ख्वाहिशात पूरे होने का नाम ही नहीं लेती, जिंदगी खत्म हो जाती है, ख्वाहिशात नहीं पूरी हो पाती, और जिंदगी मिल भी जाए तो तब भी दुनिया कंप्लीट चीज नहीं है, यहाँ की हर चीज पुरानी हो जानी है, यहाँ के शौक उतर जाते हैं। लेकिन जन्नत ऐसा जगह है जो उसकी मांगों का जवाब है, जो तुम मांगो या ना मांगो दिल में ही तुम्हारे ख्याल आया है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में किसी परिंदे को जन्नत ही उड़ता हुआ देख के तुम्हारे दिल में ये, जब जन्नत में किसी परिंदे को देखेगा ना जन्नती, तो तुम्हारे दिल में इसका गोश्त खाने की ख्वाहिश पैदा होगी। अभी दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, बोला कुछ नहीं है, उसी वक्त भुना बुनाया तुम्हारे सामने आके गिर जाएगा, ना आग ने छुआ होगा ना धुआं होगा, खुद ब खुद पक के सामने आ जाएगा। और एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जन्नत में अगर अपने घर में बच्चा पैदा होने की ख्वाहिश होगी तो उसका हमल और वजह हमल, फिर उसका दूध छुड़ाना, फिर जवान होना, सब एक साथ में हो जाएगा, औलाद भी हो जाएगी। और उसकी ख्वाहिश होगी तो जाहिर है किसी की ख्वाहिश हो ही सकती है ना। लेकिन ना वो हमल की तकलीफ और ना ही वो बच्चा पैदा करने की तकलीफ, ना ही वो दूध छुड़ाने की मुद्दत। सुभानअल्लाह। तो बहुत, तो अल्लाह ताला ने फरमाया नुजुलन नुजुलन, यानी जो ये मेहमानी है ये तो अभी इनिशियल मेहमानी है कि आते ही ख्वाहिशात पूरी होने शुरू हो गई, आते ही सब कुछ मिलना शुरू हो गया जिसकी तुम्हारी दिल तमन्ना करते थे और जिसका तुम्हें पता ही नहीं। आप देखे ना किसी बहुत बड़े के घर में आप जाए तो कई चीजों का तो आपको पता भी नहीं होता, वो जो आपके सामने लाके रख दी जाती है आपको पता ही नहीं कि ये भी चीजें कोई होती हैं। तो अल्लाह ताला की तो वहां पे ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिनका तो हमने दुनिया में सोचा ही नहीं, कभी तसव्वुर भी नहीं हम कर सकते। तो ऐसी ऐसी चीजें लाके रखी जाएंगी, ऐसी ऐसी चीजें पेश होंगी उनकी। तो हर ख्वाहिश वहां पूरी होनी है। ये है तुमने जब रब्बुन अल्लाह कहा और इस्तकामत इख्तियार की तो ये है तुम्हारा रिवॉर्ड। तो इसलिए इस्तकामत इस्तकामत, तमाम आमाल में जब अल्लाह को कह दिया रब्बुन अल्लाह तो तमाम आमाल में उसकी ताअत करो, उसकी नाफरमानी से बचो, ये इस्तकामत है। रब्बुन अल्लाह कहना तभी आपका सच्चा होगा जब दिल से यकीन हो कि मैं हर हाल में हर कदम में अल्लाह की जेरे निगरानी हूं, मुझे एक सांस भी उसकी रहमत के बगैर नहीं आ सकता, इसलिए मैंने उसकी फरमाबरदारी करनी है, मैं उसी के गुलाम बन के रहूं। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत अता फरमाए, अल्लाह हमें उनमें शामिल करे जिनके लिए फरिश्ते उतरते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।